खुदावंद के जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पहले कि हम उसके कलाम को खोलें, उसकी जिंदा और शीरी और मीठी और मुकद्दस आवाज़ को सुने, मैं चाहता हूँ कि आए हम सब उसके हजूर झुकें और उसकी रहनुमाई को मांगें, खुदा पाक रूह की कुदरत को मांगें, ताकि आज हम जो कुछ भी सीखें हम सब के लिए भलाई और रूहुल कुद्दस के फलों को पैदा करने का वसीला बने। हम दुआ मांगेंगे। खुदा बाप, तेरा कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग है, तेरा कलाम हमारी जिंदगी की राहों के लिए दुरुस्त नक्शा है, तेरा कलाम हमारी हौसला फजाई करता है, तेरा कलाम हमारी तरबियत और नसीहत करता है, और हर तरह की नापाक राहों से हमें बचाता है। खुदा बाप, अपना कलाम नाजल कर और हम सब की रहनुमाई कर, ताकि हम जो कुछ भी तेरे पाक रूह के जोर में सीखें ना उसे सुनने वाले सिर्फ बने, बल्कि अमल करने वाले बने, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो, ताकि तू नजर आए, ताकि तेरे नाम की इज्जत और तारीफ हो। आई हुई तमाम कलीसिया को जो तेरा बदन है बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का खत, उसका दो बाप, उसकी हम 5वीं आयत से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे, और इसमें से आज हम 7वीं आयत पर गौर करेंगे और सीखेंगे कि खुदावंद हमारे लिए कैसा मंसूबा रखता है, खुदावंद के ख्यालात हमारे लिए कैसे हैं, खुदावंद की सोच हमारे लिए कैसी उम्दा है। इफ़सियों 2 बाप उसकी 5वीं आयत से, जब कसूरों के सबब से मुर्दा ही थे तो हमको मसीह के साथ जिंदा किया, तुमको फजल ही से निजात मिली है, 6वीं आयत, और मसीह यसु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मुकामों पर उसके साथ बिठाया, 7वीं आयत, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यसु मसीह में है, यसु मसीह में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की नहायत बेनहायत दौलत दिखाए, 8वीं आयत, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं खुदा की बख्शिश है, 9वीं आयत, और ना ईमाल के सबब से, और ना ईमाल के सबब से है, ताकि कोई फख्र ना करे, क्योंकि हम उसकी कारागरी हैं और मसीह यसु में उन नेक अमाल के वास्ते मखलूक हुए जिनको खुदा ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, आमीन। 6वीं आयत में से हमने सीखा था कि मसीह यसु में शामिल करके हमें जिंदा किया गया, मसीह यसु में शामिल करके हमें खुदा के खानदान के लोग बना दिया गया, मसीह यसु में शामिल करके हमें आसमानी मुकामों पर हर वो रूहानी नेहमत और बरकत बख्शी, और मसीह यसु में हमारी हालत, हमारा मुकाम क्या है कि हम उस खुदावन खुदा लश्करों के रब यसु मसीह के तख्त के सामने आसमानी मुकामों पर बिठाए गए। और हमने इसमें से सीखा था कि ये हमारी रूहानी हालत है, कि हमारी रूहानी हालत, हमारा रूहानी मुस्तकबिल, हम कहाँ पर आखिर ना ख़त्म होने वाली जिंदगी गुजारेंगे, खुदा की हजूरी में, खुदा की रहनुमाई में, जहां पर ना कोई दुख होगा, ना तकलीफ, ना परेशानी, ना बीमारी, और ना हमें सामना होगा जैसे आज हमें इस मौजूदा दौर में सामना है, दुश्मनी का, रंज का, बीमारी का, बदरूहों का, घर घर में फसाद का, मुल्क में बेचैनी का, भूख का, बदहाली का, गना का, और बहुत दफा ईमानदारों का आपस में लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे से खुश नहीं है, बेटा बाप से खुश नहीं है, दोस्त दोस्त से खुश नहीं, जिंदगी दुखों से पुर है। लेकिन याद रखें, यीशु मसीह ने कहा कि इस जमीन पर जब तक तुम मेरे पीछे चलते रहोगे, जो कोई, इसे यूं कहा गया है यीशु मसीह की अंजील में, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी सलीब हर रोज उठाए। सो इस जमीन पर हमें ये तमाम चीजों का, मुसीबतों का, दुखों का, मसीह के लिए बहुत दफा नाचीज, हकीर हम गिने जाते हैं, जो इस दुनिया की नजर में, बहुत दफा हमारी नजर में बहुत ही बेइज्जती का बायस होता है। बहुत दफा हम जब मसीह के नाम से लान तीन किए जाते हैं तो बाइबल मुकद्दस कहती है शादमान और खुश होने की जरूरत है। जब मसीह के लिए ठुकराए जाते हैं, जब मसीह के लिए नीची दर्जे के लोग गिने जाते हैं, तो बाइबल मुकद्दस कहती है कि तुम खुदा के लोग हो, शाही काहिनों का फिरका, ऐसी उम्मत जो मुकद्दस कौम है, खुदा की अपनी उम्मत, यीशु मसीह के खून खरीदे हुए लोग। सो इस जमीन पर हमें इन तमाम बातों का सामना है, लेकिन हमारी हालत, जो रूहानी हालत है, वो क्या है? हमें आसमानी मकामों पर बहुत अच्छा दर्जा हासिल है। और जितने ज्यादा दुख, मुसीबत, परेशानियां, इम्तहान, आजमाइशें हम इस जिंदगी में, इस जमीन पर उनका सामना करेंगे, खुदावंद की हजूरी में उतना ही बड़ा अजर मिलेगा। क्योंकि मत्ती की इंजील में लिखा है, जब तुम लान तान किए जाओगे मसीह की खातर, तो दिलगीर ना होना, परेशान ना होना, बल्कि लिखा है शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। सो खुदावंद खुदा के कलाम में से 7वीं आयत में से आज हम सीखेंगे, पालूस रसूल कहता है कि उसने हमें जिंदा किया, उसने हमें मसीह में शामिल किया, उसने हमें आसमानी मकामों पर बिठाया। और 7वीं आयत में लिखा है, 6ठी आयत से आपके लिए पढ़ूंगा, और मसीह यीशु में शामिल करके उसके साथ जलाया और आसमानी मकामों पर उसके साथ बिठाया, 7वीं आयत, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहाय दौलत दिखाए। जब हम इस आयत के दो हिस्से करते हैं, तो यहां पर हमें सीखने के लिए जो बात मिलती है, पालूस रसूल कहता है कि खुदावंद खुदा ने अपनी मेहरबानी से, अपनी रहमत से, अपनी शफकत से, अपने फजल से, जो उसने हम पर किया, यानी कि यीशु मसीह में, यीशु मसीह में हम पर किया, वो क्या है कि हमें उसने निजात दी, उसने हमें जिंदगी का उम्दा मंसूबा बख्शा, और वो हमारी चट्टान है, वो हमारी देखभाल करने वाला, हमारी देखभाल करने वाली सिपर है, हमारे छुपने की जगह मुहैया करने वाला सब कुछ यहोवा यरी। और ये सब उम्दा तोहफे, उम्दा नेमतें, बरकतें, जिसके बारे में पालूस रसूल पहला करंथियों उसका 2 बाप उसकी 9वीं आयत में यूं कहता है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में, ना आदमी के दिल में आई, वो सब खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की। वो उम्दा बातें, वो खूबसूरत मुस्तकबिल जिसमें खुदावंद यीशु मसीह बादशाह होगा, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह तख्त नशीं होगा, और जिसमें खुदावंद यीशु मसीह के लोग उसकी इबादत और परस्तिश और नूर की मानद चमकेंगे। इसलिए खुदावंद का मंसूबा और खुदावंद की जो सच्चाई हमें सिखाती है कि खुदा का वादा हमारे लिए क्या है। जब हम पुराने अहदनामा में यर्मिया नबी के सहीफे को देखते हैं तो उसके 29वें बाप में, जब बनी इसराइल कौम गुलामी में थी, जब बनी इसराइल कौम दुख में थी, जब बनी इसराइल कौम को गुलाम करके असीर करके बाबुल में ले गए, नबूकत नजर बादशाह था, तो उस दौर में बहुत से लोग क्या कर रहे थे? झूठी नबूवतें कर रहे थे, झूठे ख्वाब देखकर उनको बता रहे थे, बहका रहे थे कि ये होगा वो होगा। लेकिन यर्मिया नबी पर खुदा का कलाम नाजल हुआ, यर्मिया 29वां बाप उसकी 11वीं आयत में यूं खुदावंद यर्मिया को फरमाता है कि मेरे लोगों को बता, बेशक तुम असीरी में, मुसीबत में, परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, हर तरह की लाचारी में और बहुत से झूठे नबियों का सामना कर रहे हो, बहुत से झूठे लोगों का फरेब का सामना कर रहे हो, लेकिन 11वीं आयत में खुदा कहता है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूँ, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। सो खुदा हमारे लिए जिस तरह बनी इसराइल कौम के लिए उसके ख्यालात, उसके मंसूबे, उसका वादा और उसकी उसकी सच्चाई बयान करती है कि उम्दा ख्यालात हैं। तो यहाँ पर खुदा कहता है, खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। और 12वीं आयत में लिखा है, तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा। और 13वीं आयत में, और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे, जब पूरे दिल से मेरे तालब होगे मैं तुमको मिल जाऊंगा, खुदावंद फरमाता है, और मैं तुम्हारी असीरी को माकूफ करूंगा और तुम सबको और तुमको उन सब कौमों में और सब जगहों से जिनमें मैंने तुमको हाँक दिया था जमा करूंगा, खुदावंद फरमाता है। सो यहां पर खुदा का मंसूबा और वादा उनके लिए, और ये खुदा की मेहरबानी, खुदा की शफकत है। और यहाँ पर पालूस रसूल हमें सिखाता है, ताकि वो अपनी उस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में है हम पर आने वाले ज़मानों में, ऐसा दौर आएगा जिसमें ईमानदार खुदावंद की हजूरी में होंगे, जिसमें लोग देखेंगे जो आज खुदावंद का इनकार करते हैं, जो आज खुदावंद के लोगों को बुरा भला कहते हैं, जो आज खुदावंद यीशु मसीह के नाम को बेइज्जत करते हैं, यीशु मसीह के लोगों को बेइज्जत करते हैं, वो दौर आएगा कि वो देखेंगे कि खुदावंद अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाएगा, जिसमें ईमानदार सूरज की मानद चमकेंगे, जिसमें ईमानदार सितारों की मानद होंगे, जिसमें ईमानदारों को इस जमीन पर क्या कहा गया है, तुम दुनिया का नूर हो। और ये उसकी बादशाही में होगा। जब हम देखते हैं मत्ती की अंजील उसका 13वां बाप उसकी 43वीं आयत में, तो यहां पर बयान किया गया है, यीशु मसीह बात कर रहा है कि जब दुनिया फना होगी, आखिर होगा, तो ईमानदार कैसे होंगे, जो उस पर यकीन करते हैं उनका मकाम इस जमीन पर कैसा होगा। मत्ती की इंजील 13वां बाप उसकी 43वीं आयत में लिखा है, उस वक्त, किस वक्त, जब अबलीस फना किया जाएगा, जब दुनिया तबाह हो जाएगी, जब यीशु मसीह बादशाही करने के लिए आएगा, उस वक्त रास्तबाज अपने बाप की बादशाही में आफताब की मानद, आफताब से मुराद सूरज की मानद चमकेंगे, जिनके जिसके कान हो वो सुन ले। सूरज की मानद चमकेंगे। और फिर दानियल नबी के हम सहीफा में देखते हैं, वहां पर भी दानियल नबी नबूवत करते हुए इस बात को कहता है, दानियल उसका 12वां बाप उसकी 3 आयत में, कि ईमानदार कैसे होंगे जब मुर्दे जिंदा किए जाएंगे, जब नई जिंदगी, जब नया मुस्तकबिल जिसमें अमन और सलामती होगा, शेर और बब्बर के बच्चे और सब खुदा के लोग उसकी हजूरी में होंगे। और 3री आयत में लिखा है, और अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, अहले दानिश से मुराद यानी कि वो तमाम समझदार जिनको अक्लमंद कहा गया है, जिसके बारे में हम बहुत दफ़ा देखते हैं मत्ती की अंजील ही में कि अक्लमंद वो है जिसने अपना मकान अपनी बुनियाद चट्टान पर रखी। सो अहले दानिश नूरे फलक की मानद चमकेंगे, यानी के नूर की मानद चमकेंगे, चांद और सूरज और सितारों की मानद चमकेंगे, और जिनकी कोशिश से यानी कि जिनकी मेहनत से, जैसे पालूस रसूल कहता है कि मैं अंजील से शर्माता नहीं, जैसे भाई क्रिस, भाई ताहर, भाई रजेश और दूसरे नौजवान और दूसरे मुबशर, दूसरे खादम, दुनिया भर में तमाम वो लोग जो कोशिश करके मुख्तलिफ खत्तों में मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं खिदमत करने के लिए, उनकी कोशिश से बथेरे सादक होंगे, यानी कि जो यीशु मसीह को कबूल करेंगे, सादक होंगे, रास्तबाज ठहरेंगे, सितारों की मानद अब्दुलबाद रोशन होंगे, सितारों की मानद। इसीलिए बाइबल मुकद्दस में मुकाशफा की किताब में आया है कि जब वो बादशाही के लिए आएगा, जब नया यरूशलम उतरेगा, तो उस वक्त ना अंधेरा होगा और ना किसी को रोशनी की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सब जो उसके ईमानदार जो रास्तबाज लोग हैं वो क्या होंगे, नूर की मानद चमकेंगे। और लिखा है कि ना रात होगी, ना चिराग, ना सूरज की रोशनी का कोई मोहताज होगा, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा। आप इस हवाला को पढ़ सकते हैं मुकाशफा की अंजील, मुकाशफा की किताब उसका 22वां बाप उसकी 5वीं आयत में, कि खुदा के बर्रे के तख्त के सामने उसके बंदे उसकी इबादत करेंगे और उसका मुंह देखेंगे और उनके नाम उसके माथे पर लिखे हुएंगे। और 5वीं आयत में लिखा है, और फिर रात ना होगी और वो चिराग और सूरज की रोशनी के मोहताज ना होंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा उनको रोशन करेगा और वो अब्दुलबाद बादशाही करेंगे। ये ईमानदार की हालत, ये ईमानदारों का मुस्तकबिल है जिसमें आप सब शामिल हैं। इसलिए पालूस रसूल कहता है 7वीं आयत में, ताकि वो अपनी इस मेहरबानी से जो यीशु मसीह में हम पर है, अपनी मेहरबानी खुदा ने क्या की, हमें निजात बख्शी, और इस निजात के पैगाम को हमें दूसरों तक लेकर जाना है, हर कबीले, हर नस्ल, हर रंग, हर जुबान बोलने वाले तक, ताकि आने वाले जमानों में अपने फजल की बेनहायत दौलत दिखाए। हमारी सही हालत उस वक्त लोग देखेंगे, हमारी सही हालत उस वक्त देखेंगे, उस बेनहायत खुदा के फजल की दौलत को देखेंगे कि हमने कितनी बड़ी बरकत को ठुकरा दिया जमीन पर। सो आप इस जमीन पर सितारों, आप इस जमीन पर बाइबल मुकद्दस मत्ती की अंजील 14:5-14 में लिखा है, तुम दुनिया का नूर हो, और नूर का मतलब है चमकना, रहनुमाई करना। आज सवाल ये है आप सब से और मेरी जात से, क्या आज हम उन तारीकी में बैठे हुए लोगों के लिए रहनुमाई बन रहे हैं? क्या आज हम नूर की मानद चमक रहे हैं? क्या आज हम दूसरों को रोशनी दे रहे हैं? अगर नहीं, तो बाइबल मुकद्दस में से अपनी हालत को पहचान कर हमें दुनिया का नूर हैं, बाइबल हमें दुनिया का नूर कहती है, नूर की मानद चमकने की ज़रूरत है। खुदावंद आपको बरकत दे। आए हम खुदा के हुजूर झुकें। खुदा बाप तमाम बहन भाइयों को बड़ी बरकत दे, और हमें तूने कहा है कि तुम दुनिया का नूर हो, सो खुदावंद हमें नूर की मानद चमकने की कुव्वत और ताकत दे, ताकि तेरे जोर में चलें। यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन।